मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार। आज 2 जनवरी 2020 के इस AFEIS के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, चूंकि यह वर्ष का मेरा पहला स्वागत है तो इस स्वागत शब्द के साथ मैं अभिनंदन शब्द को भी शामिल करना चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आप सबके साथ ही अभिनंदन करता हूं 3 मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 15 से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। ये दोस्त हैं काजल चंदेल बैतूल मध्य प्रदेश से, रिचा फरीदाबाद हरियाणा से और रिजवान अहमद सिकंदरपुर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन पहले एक दो दूसरी खबरों को देख लेते हैं। देखिए, सिविल सर्विस का पैटर्न क्या है? आपने अगर कल की रेडियो न्यूज सुनी हो तो आपने उसमें एक न्यूज सुनी होगी और वो ये कि जो इसरो है वो तमिलनाडु के तोटिकोरन जिले के एक स्थान का नाम उसमें लिया गया था, थूटुकुडी। उस स्थान पर छोटे छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए एक नया केंद्र स्थापित करने जा रहा है। ये देखिए एक छोटी सी खबर है, राइट। मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी के पैटर्न को इसके माध्यम से आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। सामान्यतः स्टूडेंट फंसते कहां हैं? आपने ये न्यूज सुनी, अपने दिमाग में आपने एक तथ्य दर्ज कर लिया और वो तथ्य है थूटुकुडी, ये एक स्थान का नाम है और इस स्थान पर इसरो छोटे छोटे उपग्रहों को छोड़ने के लिए प्रक्षेपण केंद्र बनाने जा रहा है। आप सोचते हैं कि अगर एग्जामिनेशन में पूछा गया तो यही पूछा जा सकता है कि छोटे उपग्रहों के लिए कौन सा प्रक्षेपण केंद्र कहां बनाया जा रहा है या थूटुकुडी चर्चा में क्यों आया। अगर आप सोच रहे हैं यही बात तो बिल्कुल गलत नहीं सोच रहे हैं, लेकिन यहां थोड़ी सी गलती आपसे हो रही है मुझे ऐसा लगता है, और वो ये कि आप अपनी सोच को यहीं तक सीमित कर दे रहे हैं। इसे थोड़ा सा आपको और भी विस्तार देना होगा और स्पेशली यह बात में अब जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पैटर्न हो गया है और उसमें जिस तरीके से प्री में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं, उसे ध्यान में रख करके कह रहा हूं। चलिए, आपने अखबार में पढ़ लिया, आपने न्यूज में सुन लिया, आपने नोट भी कर लिया, आप उसे रिवाइज भी कर रहे हैं और दिमाग में ये तथ्य आपके दर्ज हो गया है, आप भूल नहीं रहे हैं और एग्जामिनेशन में अगर यही तथ्य पूछा गया तो आप उसका उत्तर बहुत सही सही दे सकेंगे। लेकिन अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इसके साथ साथ वहां के बारे में कुछ और भी तथ्य जानें। ये वो आपसे एक्सपेक्ट करता है, यानी कि अब इस पर आपको थोड़ा सा वक्त खर्च करना चाहिए। कैसे खर्च करना चाहिए, किस बात पर खर्च करना चाहिए, तो आइए मैं कुछ वे तथ्य आपके सामने रखता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो थूटुकुडी है, ये जगह का नाम है, तूतीकोरन एक जगह है, तूतीकोरन। तो 2018 तक ये स्थान तूतीकोरन कहलाता था लेकिन अब इसका नाम कर दिया गया है थूटुकुडी। और मजेदार बात है कि ये जो थूटुकुडी है ये जिला भी है और एक स्थान है, जिला मुख्यालय भी है, ठीक है। यानी कि जिले का नाम भी थूटुकुडी है और स्थान का नाम भी थूटुकुडी है जहां ये स्थापित किया जा रहा है। पुराना नाम इसका तूतीकोरन था और इतिहास की किताबों में, भूगोल की किताबों में आपको तूतीकोरन शब्द ही पढ़ने को मिलेगा और अभी भी जो आप 2018 से पहले के मैप देखेंगे तो उसमें यही देखने को मिलेगा, तूतीकोरन, ठीक है। अब आपको जानना चाहिए कि इनफैक्ट ये है कहां, इसकी लोकेशन कहां है। तो जब आप लोकेशन ढूंढेंगे नक्शे में तो आपको पता लगेगा कि जो हमारा कोरोमंडल तट है, यानी कि जो ईस्ट कोस्ट है, कोरोमंडल तट और ईस्ट कोस्ट किस कहां स्थित है। नो डाउट कि वैसे तो हिंद महासागर में स्थित है लेकिन वह बंगाल की खाड़ी में है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो थूटुकुडी स्थान है ये बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है। थोड़ा सा आपने विस्तार दे दिया इसे, फिर आप इसे थोड़ा सा विस्तार दीजिए कि यह क्या है, तो पता लगेगा कि यह पोर्ट सिटी है, यानी कि बंदरगाह नगर है, 4.25 लाख की आबादी है। चलिए, ये तो एक सामान्य सी सूचना हो गई, अगर आपको आबादी नहीं भी मालूम है तो कोई बड़ी बात नहीं। जो दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इससे जुड़ी ही, वो ये है कि ये जो स्थान है ये नमक के लिए प्रसिद्ध है, नमक निर्माण के लिए, साल्ट, और दूसरा मोतियों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, पर्ल जिसे आप कहते हैं, यहां पर्ल फिशिंग बहुत होती है। पर्ल फिशिंग का मतलब समझिए कि जो समुद्र में जो मोती होते हैं, तो सीप में मोती होते हैं, तो वो सीप को निकालने का काम यहां बहुत होता है। यहां का मतलब मुख्य ऑक्यूपेशन है। इसे तमिलनाडु का सी गेटवे कहा जाता है। और जब आप लोकेशन देखेंगे तो पाएंगे कि ये दक्षिण में, देखिए तमिलनाडु आपको कहां मिलेगा, बिल्कुल दक्षिण के टिप से लेकर के फिर ये ईस्ट कोस्ट की तरफ ऊपर बढ़ता है। तो अगर ये दक्षिण के बिंदु पर है तो इसकी लोकेशन कहां हो सकती है, तो आप कहेंगे कि ये बकायदे भारत के पूर्व, दक्षिण पूर्व में स्थित है, या तो आप पूर्व कह लीजिए, लेकिन ज्यादा अच्छा शब्द होगा, एप्रोप्रिएट वर्ड होगा दक्षिण पूर्व। और अगर दक्षिण पूर्व में स्थित है तो मैं अगर आपसे पूछूं कि और कोई नाम बताइए बंगाल की खाड़ी, तो मैं आपको बता चुका हूं, कुछ और भी हो सकता है क्या, तो आप कहेंगे कि यस मन्नार की खाड़ी। इसके बाद से, इसके नीचे से मन्नार की खाड़ी, यानी कि जो श्रीलंका को अलग करती है, जो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है, तो मन्नार की खाड़ी पर यह स्थित है उसके किनारे। तो इतने विस्तार से आप उसे फिर देखने की कोशिश करते हैं और तब जाकर के सिविल सर्विस के सही तरीके से तैयारी हो पाती है। और इस ये जो न्यूज आपने छोटी सी सुनी उसके साथ आप न्याय कर पाते हैं। ये सब सुनने में करने में कितना समय लगेगा, देखिए डेली ऑडियो लेक्चर के जरिए तो मैं इस तरह की जो जरूरतें होती हैं उनकी पूर्ति करने की दोस्तों कोशिश करता हूं, लेकिन हो सकता है कि कुछ तथ्य छूट भी जाते हों, लेकिन जहां तक मेरा विश्वास है बहुत महत्वपूर्ण तथ्य तो मैं छूटने नहीं भी देता हूं, लेकिन आप भी अपने लेवल पर इस तरह की कोशिश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो दूसरी खबर है वो कल की खबर थी, कल के अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि भारत सरकार जो हमारी आधारभूत संरचना है उस पर बहुत अधिक धन खर्च करने जा रही है, और एक बहुत अच्छी खबर है ये, अर्थव्यवस्था की जो खराब स्थिति होती जा रही है उसको देखते हुए सरकार ने घोषणा की है कि वो आने वाले 5 सालों में 102 लाख करोड़ रुपए वो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए खर्च करेगी, आधारभूत संरचना के लिए। ये जो आधारभूत संरचना है आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में, लगभग 1928-29 के आसपास, जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, महामंदी आप कह लीजिए अमेरिका में, तो उसने महामंदी से बचने के लिए यह उपाय किया था कि आधारभूत संरचना का विकास करना शुरू कर दिया। तो उससे एक तरह से कह लीजिए कि लोगों को काम मिलने लगा, फैक्ट्रियां काम करने लगी, क्योंकि आधारभूत संरचना का जब आप विकास करेंगे तो ये सारी चीजें होंगी। इसमें भी 102 लाख करोड़ रुपए में जो सबसे ज्यादा जो जोर दिया जा रहा है, देखिए उसमें है सबसे ज्यादा पैसा जो लगना है वो है आपके बिजली का क्षेत्र है, सड़क निर्माण है, रेल निर्माण है, इन परियोजनाओं पर सबसे ज्यादा खर्च होना है। तो इससे अर्थव्यवस्था में एक प्रकार से फिर से थोड़ी सी जान आने की संभावना बनती है। फ्रेंड्स, एक मैं आपको आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं कनिका दत्ता जी का, उसमें एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, उपराष्ट्रवाद। ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रवाद के बारे में आप जानते हैं ना, भारत मेरा देश है और मैं भारतीय हूं और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो ये राष्ट्रवाद है, अच्छी बात है। उपराष्ट्रवाद क्या है? उपराष्ट्रवाद यह है कि एक ही राष्ट्र में जो अलग अलग क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं वो उसके प्रति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएं, उसी को ही अपना सब कुछ मानने लगे। जैसे महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र को माने, बिहार वाले बिहार को माने, मध्य प्रदेश वाले मध्य प्रदेश को माने, केरल वाले केरल को माने, तो ये उपराष्ट्रवाद है। तो केवल मैंने आपको थोड़ा सा परिचय बताया है, इस आर्टिकल को आप लोग जरूर पढ़िएगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से नोट भी कर लीजिएगा, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपके काम आ सकता है। दोस्तों, अब मैं आता हूं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर, विश्व व्यापार संगठन पर। विश्व व्यापार संगठन के लिए मैंने कल आपको एक क्लिपिंग्स प्रोवाइड की थी, भरोसे के संकट से जूझ रहा विश्व व्यापार संगठन, ये बिजनेस स्टैंडर्ड का एक तरह से आर्टिकल कह लीजिए या लेख जैसा कह लीजिए, सूचना जैसा। तो इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें दिए गए हैं, मैं उन पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि वक्त मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है। मैं चाहूंगा कि वो क्लिपिंग्स अभी भी AFEIS पर डले हुए हैं, अगर आपने उसमें से पॉइंट्स नोट नहीं किए हों तो प्लीज उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें, और खासकर केवल इस बात को ध्यान में रख करके नोट करें कि आज ये जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके सामने किस तरह के संकट पैदा हो गए हैं। आपने देखा कि जो इसका न्यायालय है उसके सामने संकट पैदा है, वहां न्यायाधीश नहीं रह गए हैं, केवल एक ही न्यायाधीश रह गया है। इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की लोग बात नहीं मान रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रीय संगठन बन गए हैं, तो इसकी उपयोगिता कम हो गई है, इसके पास धन की भी कमी होने लगी है, विवाद के निपटारा करने में एक एक साल डेढ़ डेढ़ साल का समय लग जाता है। तब जो छोटे देश हैं उनको अब ऐसा लगने लगता है कि लगा है कि हमारी बात की यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। इस तरह के कुछ पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं जो आपको बकायदे 1, 2, 3, 4 करके नोट कर लेने चाहिए। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये 1995 में अस्तित्व में आया, खासकर उससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आप देखते हैं कि दुनिया को एक करने की कोशिश होने लगी। तो 1948 में एक संधि बनाई गई थी कस्टम शुल्क कम करने के लिए, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। बाद में 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस गैट को रिप्लेस कर दिया गया, या यूं कह लीजिए कि गैट की जगह ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया। कभी कभी स्टूडेंट कुछ चीजों को लेकर के कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, तो मैं उसे क्लियर करने के लिए एक दो बातें आपको और बताना चाहूंगा। दोस्तों, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत हुई ऑफिशियली, उससे पहले एक एग्रीमेंट हुआ था, उसको कहते हैं मार्केश एग्रीमेंट। इस पर 124 देशों ने हस्ताक्षर किए थे 1994 में। तो इस एग्रीमेंट के तहत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी। तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये मार्केश एग्रीमेंट क्या है, राइट? और इसके बाद 1948 में जो गैट बनाया गया था उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्लेस किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक संस्थान है, सबसे बड़ा, वर्ल्ड ट्रेड है तो सबसे बड़ा होगा ही। देखिए, इसका जो सबसे प्रमुख काम है, जो मेन वर्क है इसका क्या है, यह आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। यह रेगुलेट करता है, रूल्स रेगुलेशन बनाता है। किन चीजों के बारे में? वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मैं रिपीट कर रहा हूं, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इनकी सारी व्यवस्थाओं को देखता है, वो ट्रेड एग्रीमेंट्स की स्थितियों को देखता है, और अगर कुछ राष्ट्रों के बीच अगर किसी बात को लेकर के विवाद हो रहा हो तो उन विवादों का निपटारा करने की जिम्मेदारी भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर है। इसका जो स्ट्रक्चर है, उसके 5 इंपॉर्टेंट विंग है, लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट विंग है उसको हम कहते हैं मिनिस्टीरियल काउंसिल, यानी मंत्री स्तरीय परिषद। और ये चूंकि अब देखिए मंत्री शब्द है, मंत्री स्तरीय परिषद, तो इस परिषद में सभी देशों के वे मंत्री रहते हैं जिनका संबंध व्यापार से है और वो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए जाते हैं फाइनली, वो मंत्री स्तरीय परिषद के द्वारा लिए जाते हैं। और एक आपको अक्सर अखबारों में शब्द पढ़ने को मिलता होगा, दोहा वार्ता, है ना, ये कतर में स्थान है, दोहा वार्ता जो 2001 में महासम्मेलन हुआ था। तो ये जो सम्मेलन हुआ था ना, ये मंत्री स्तरीय ही सम्मेलन था, ये चौथा मंत्री स्तरीय सम्मेलन था जिसकी चर्चा अक्सर आपको अभी भी पढ़ने को मिलती रहती होगी। तो दोस्तों, समय को देखते हुए जो बहुत महत्वपूर्ण बातें मुझे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बतानी थी, जिनका उल्लेख अक्सर लेखों में होता रहता है, उन्हें मैंने आपके सामने रखा है। और मुझे यकीन है कि इससे थोड़ी सी दृष्टि कहीं ना कहीं आपकी जरूर साफ हुई होगी। एक सजेशन मैं जरूर देना चाहूंगा कि बेहतर होगा कि अगर आप 10 मिनट निकाल करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर को थोड़ा सा देख लें, उस पर एक नज़र मार लें, तो मेरी बातें आपके लिए और अधिक उपयोगी हो सकेंगी। तो मुख्य विषय के बारे में दोस्तों आज बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, शबाना यूसुफ, अहमद मुंतकीम कासगंज उत्तर प्रदेश से, मनीष पटेल मंडला मध्य प्रदेश से, दिव्या लखनऊ उत्तर प्रदेश से, अनूप राज, अनूप कुमार पांडे हापुड़ उत्तर प्रदेश से, गौरव मेघवाल और पायल खत्री उदयपुर से, डॉक्टर शशांक भूषण, राहुल समस्तीपुर बिहार से, अनुराग राय गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, संदीप अख्तर पश्चिम बंगाल से, अभिषेक रंजन रांची उत्तराखंड से, और मानस झा दिल्ली से। आप सबका बहुत बहुत आभार मित्रों। इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।